ओम शांति। जब ज्ञान की वर्षा हो रही हो तो क्या करना चाहिए? कहीं अकाल पड़ा हो और बहुत समय के बाद अगर वर्षा हो जाए धुआंधार तो क्या करना चाहिए? लूट लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। तो सब तैयार है ना? तो बाबा आते हैं क्या करने? ज्ञान की वर्षा करने। छातों से अपने आप को सुरक्षित नहीं करोगे। हमने सुना है एक भिखारी था, सारी उम्र भीख मांगता रहा, एक ही स्थान पर भीख मांगता रहा, स्थान को कभी बदली नहीं किया, वहीं उसकी कुटिया, वहीं उसकी झोपड़ी और झोपड़ी के सामने ही भीख मांगता रहा। पर हृदय में प्रबल इच्छा थी धन कमाने की, धनवान बनने की, परंतु जीवन भर भीख ही मांगता रहा और भीख मांगने से कभी कोई धनवान नहीं होता। एक दिन आया कि वो मर गया, भिखारी ही जिया और भिखारी ही मर गया। उसके मरने के बाद उस स्थान की सफाई हुई, झोपड़ी को हटा दिया गया और सफाई के समय ये पता चला कि वो जहां रहता था उसी स्थान के नीचे एक खजाना गड़ा हुआ था। हम यहां किस लिए आए हैं? भरने के लिए। हमारी दशा उस भिखारी की तरह ना हो जाए। ये स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है ये? ज्ञान सरोवर, ज्ञान सागर का स्थान। ज्ञान सरोवर भी है, मधुबन भी है, ज्ञान सरोवर भी है, तो पीस पार्क भी है, तो शांति वन भी है, तो दिलवाड़ा भी है, तो अचल घर भी है, तो लाइट हाउस भी है, तो गुरु शिखर भी है, तो सच्चा सच्चा गुरुद वार भी है, हरिद्वार भी है, सच्ची सच्ची गौशाला भी यही है। चारों धाम, सच्चा सच्चा शांति स्तंभ, सच्चा सच्चा प्रकाश स्तंभ भी यही है, लाइट हाउस भी यही है, पीस हाउस भी यही है। तो ऐसे स्थान पर हम बैठे हैं जहां पर अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान है। तो उस रत्नों से हमें स्वयं को भरना है, इतना भरना है कि वो बाहर निकलने लगे, सारे विश्व को प्रकाशित कर दे। क्योंकि बाबा ने कहा ये ज्ञान ही प्रकाश है, संसार में अंधकार है, इस ज्ञान के प्रकाश से ही संसार का अंधकार दूर किया जा सकता है। तो आज की मुरली कितने साल पुरानी है? आज से 36 साल पुरानी है मुरली, भगवान के मुखारविंद से निकली हुई। कल की मुरली में था ना, भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता, भगवान के मुखारविंद से निकले हुए ये वचन, ये महावाक्य कोई साधारण महावाक्य नहीं है। एक एक महावाक्य क्या है? रत्न है। एक एक महावाक्य में ईश्वरीय जादू है। एक एक महावाक्य जीवन को पलटने वाला है। एक एक महावाक्य में शक्ति है, एक अद्भुत सी पावर है। अगर उसको जीवन में धारण कर लिया जाए तो क्या से क्या हो जाएंगे। तो मुरली है कितने साल पुरानी? 36 साल पुरानी। तो बासी लगती है या ताजी लगती है? ज्ञान कभी बासी नहीं होता है, ज्ञान तो तरोताजा है और तरोताजा करता है। हम बासी हो जाते हैं। तो आज बाबा ने किस किस से मुलाकात की? अधर कुमारों से मुलाकात की, कुमारों से मुलाकात की और कुमारियों से भी की और माताओं से भी की है, जो मुरली में छपा नहीं है, परंतु कुमारियों से भी मुलाकात की और बॉम्बे वालों से भी मुलाकात की। नहीं, मुरली में छपा नहीं है कहीं, और आगे की मुरली अगर देखो तो और माताओं से मुलाकात भी है और कुमारियों से मुलाकात भी है। बहुत बड़ी मुरली है आज की उसमें से, क्योंकि भोजन जो होता है वो थोड़ा उतना ही देना चाहिए जितना हजम हो। तो कहां से चालू करना है, अधर कुमारों से चालू करना है या कुमारों से चालू करना है या मुरली से चालू करना है? मुरली से चालू करें। चलो ठीक है, तो कौन किससे मिल रहा है, किसने किसको देखा, किसको देख रहे हैं बाप दादा? पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं, और किसको देख रहे हैं? श्रेष्ठ प्रारब्ध को देख रहे हैं, उनके प्रारब्ध को देख रहे हैं। प्रारब्ध अर्थात भाग्य, प्रारब्ध के कई अर्थ है। बाबा जिस अर्थ से प्रारब्ध शब्द कहता है वो है भाग्य। तो क्या देख रहे हैं बाप दादा? भाग्यशाली पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे हैं, और किसको देख रहे हैं? श्रेष्ठ प्रारब्ध को देखते हैं, और यही बेहद के बाप को क्या है? नाज है। किस पे नाज है? आठ रत्नों पर नाज है या 108 पर नाज है? 16,000 के भी किस पर? लास्ट मन का जो है, लास्ट दाना जो है, उस पर भी नाज है। चाहे अलबेले पुरुषार्थी हो, चाहे तीव्र हो, चाहे मध्यम हो, कैसा भी हो, कैसा भी हो, चाहे तीव्र, चाहे मध्यम, चाहे अलबेले, चाहे ढीले ढाले, द लास्ट एंड द लीस्ट, इंग्लिश में शब्द है लीस्ट, जो बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ उस पर भी भगवान को नाज है, और हमें थोड़ी गड़बड़ है। भगवान को उस पर भी नाज है जो कि सबसे अलबेला पुरुषार्थी है। क्यों नाज है, क्यों है नाज? क्योंकि योग्य बने। क्यों नाज है? क्योंकि भाग्यवान बने। क्यों नाज है? गायन योग्य बने और पूजन योग्य बने, अर्चनीय बने और वंदनीय बने और आदरणीय बने विश्व की दृष्टि से, दर्शनीय मूर्त बने कि अब तक भी क्या संसार की आत्माएं, भक्त आत्माएं, श्रद्धालु आत्माएं, ऐसे जो आस्तिक संसार में है, जो भगवान को मानते हैं, वो अब तक भी उसके दर्शनों के प्यासे है। नंबरवार देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं उनके लिए बाबा ने कहा। तो जो योग्य बने, एक बाप के बच्चे इतने योग्य बन गए, एक बेहद के बाप के बच्चे इतने योग्य बन गए, जो बाप को भी नाज है, बाप को भी गर्व है, नशा चढ़ जाता है उनको, बाप को भी अपने बच्चों को देखकर। और क्यों नाज है? और एक बात बोली है, क्योंकि क्योंकि क्या? पारसनाथ के संग में क्या हो गया? पारसनाथ के संग भी बच्चे क्या बन गए? पारस बन गए। पॉइंट टू बी नोटेड, सोना नहीं बने, क्या बने? पारस। पारस की वैल्यू होती है। पारस एक अद्भुत सा पत्थर है जो कि अब तक एक पहली है इतिहास में। कब था पता नहीं, कई कहते था, कई कहते नहीं था, कई उसके विरोध में है, परंतु था। किंवदंती तो है कि वो था, एक काला सा पत्थर, एक सुगंधित पत्थर, एक ऐसा धातु कि जो दूसरे धातु को यदि स्पर्श कर दे तो वो लोहा विशिष्ट सोना बन जाता है। तो पारसनाथ अल्केमिस्ट, उसने हमें क्या बना दिया? पारस बनाया, सोना नहीं। क्या बनाया? पारस बनाया। तो हम क्या कर देंगे फिर? जिसको भी हाथ लगा देंगे, अपनी वृत्ति से और वाइब्रेशन से जिसको भी स्पर्श कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। वो पारस नहीं बनेगा। वो पावर अभी उसके पास है, बना भी सकते हैं, ऐसे नहीं। हम मास्टर पारसनाथ भी तो है। तो ऐसे एक बेहद के बाप के बच्चे योग्य बने, इस पर बाप दादा को नाज है। जो अंतिम पुरुषार्थी है लास्ट और लीस्ट, उस पर भी ना आवे। 16,000 के माला का जो अंतिम मन का है उस पर भी नाज है उसे। तो बाबा ने आगे कहा कि सदा अपने को किसमें कम नहीं समझना, सदा अपने को स्वमान में कम नहीं समझना, कभी भी अपने को स्वमान में कम नहीं समझना। जो फिर बाबा मुरली सीधी स्वमान के ऊपर आ गई। बाबा ने हमें इस मुरली में भी आज बहुत ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए। स्वमान अर्थात स्वयं स्वयं को मान देना। बाबा ने कहा तुम भक्त नहीं हो, तुम गुलाम नहीं हो, तुम दास नहीं हो, तुम कौन हो? बच्चे हो, ईश्वरीय संतान हो, ईश्वरीय औलाद हो। तो ये तुम्हें नशा रहना चाहिए। तो स्वमान वाले की क्या क्या निशानी सुनाई बाबा ने? स्वमान वाले कभी देहाभिमान में नहीं आएंगे, और जो गिरे हुए हैं उनको उठाएगा। ये पुण्य आत्माओं की निशानी है। क्यों गिरा? गिरना ही चाहिए, कर्मों का हिसाब है, जो करेंगे सो पाएंगे। संकल्प और बोल में भी ऐसे संकल्प ना हो। क्यों गिरा? गिरना ही चाहिए, काम ही ऐसे किए थे। बहुत तंग किया था, बहुत सताया था हमको, अभी अस्पताल में भर्ती है। कर्मों का हिसाब, उससे मिलने तो जा रहे हैं, हाथ में गुलदस्ता है, पर मन में भावनाएं कौन सी है? बहुत सताया हमें 10 साल। तो बाबा ने कहा संकल्प में भी और बोल में भी इस तरह की भावना ना हो। ये पुण्य आत्मा की निशानी है। तो स्वमान वाले कभी देहाभिमान में नहीं आएंगे। स्वमान वाले सदा सर्व को मान देंगे। किस किस को मान देंगे? किस किस को मान देंगे? किस किस को मान देंगे? छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, गुणवान अवगुणवान, माया जीत और माया वश। गुणवान को मान देना आसान है, बड़े को मान देना आसान है, माया जीत को मान देना आसान है, बड़ों को मान देना आसान है। बाबा किसको मान देने की बात कर रहे हैं? छोटों को मान दो, जो परवश है, परवश को स्वतंत्र करो कहा है बाबा ने आगे मुरली में। किसको मान दो? जो छोटा है। छोटा है पर ना मालूम क्या पुण्य किए थे, कैसी भक्ति की थी, हमें क्या पता क्या क्या किया होगा ईश्वर, कौन कौन से जतन किए होंगे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। और अब आइए ज्ञान में, हमें क्या पता कौन क्या है, क्या क्या बड़े बड़े त्याग कर कर वो आत्मा हमारे सामने इस समय है। इसके लिए जो छोटे हैं उनको भी मान दो, जो अज्ञानी है, भले अब अज्ञानी है पर क्या हम ये कह सकते हैं कि वो देवकुल की आत्मा नहीं है? किसी ने 20 साल तक ब्रह्मा कुमारी इसका विरोध किया और फिर ज्ञान में आई। जब वो विरोध कर रही थी आत्मा, उस समय भी वो देवकुल की ही महान आत्मा थी। जब वो विरोध कर रही थी तब भी वो वही आत्मा थी जो सतयुग में देवता बनकर विचरण कर रही थी। तो वह आत्मा भी जो अब अज्ञान में है वो अब परवश है। तो बाबा ने कहा उनको भी मान दो, माया वश, जो माया जीत है उनको मान देना तो आसान है, परंतु जो माया के वश है, किसी संस्कार के वश है, योग्य टीचर अर्थात लास्ट संडे की मुरली, कमजोरी को ना देखेगी ना ही वर्णन करेगी, सदा विशेषताओं को देखने वाली और विशेषताओं का वर्णन करने वाली, चित्त पर किसी की भी कमजोरी को न रखने वाली, दिलाराम बनकर सबके दिल को आराम देने वाली, हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली, बाप समान गद्दी नशीन, विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। अगर टीचर ही अवगुण देखे तो स्टूडेंट और टीचर में क्या अंतर? तो किसको मान देना है? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे गैर ब्राह्मण हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो, चाहे बीके हो चाहे गैर बीके हो, कोई भी हो, सबके लिए समदर्शी। जो महान राजाएं होते हैं वो समदर्शी होते हैं। सम्राट अशोक के लिए कहा जाता है वो समदर्शी था, सबके लिए समान। राजा विक्रमादित्य के लिए कहा जाता था कि वो समदर्शी था, सबके लिए समान दृष्टि। तो ज्ञानी अज्ञानी, छोटे बड़े, गुणवान अवगुणवान, गुणवान की स्तुति करना को मान देना तो सहज है, पर जो अवगुणवान है या फिर जो गुणवान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अवगुणवान की परिभाषा बाबा ने कही, अर्थात जो गुणवान बनने की का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे पुरुषार्थी आत्माओं के लिए भी मान, तो सबको मान देने वाला है। अगर जो समान में है, बाबा ने तो समान के बारे में कई बातें कही है, जो समान में है उन्हें देह अभिमान आ नहीं सकता। जो समान में है वो दूसरों के देह अभिमान को भी नष्ट करते हैं। जो समान में है मान उनके पीछे पीछे कैसे आता है, परछाई की तरह आता है। बाबा ने कभी एक मूल्य में कहा है 84, हाथ में निरंतर एक ताबीज बांध के रखो। कौन सा ताबीज? अगर वो ताबीज है तो स्वतंत्र सफलता का ये मंत्र है, बाबा ने कहा था। वो ताबीज है स्वयंमान में रहो और दूसरों को सम्मान दो। तो ये ताबीज निरंतर हाथ में बंधा हो। दूसरों को मान देना, इसके लिए भी बाबा ने कभी मुरलियां चलाई। बहुत सारी मुरलियां रुहाब और रहम पर है। दूसरों को मान देना अर्थात किसको मान देना? उनकी मत को मान देना, उनके विचार को मान देना। ये सबसे ज्यादा होता है मीटिंग में। जब मीटिंग में बैठते हैं तो हमें लगता है हमारा जो विचार है वो अति श्रेष्ठ है और दूसरे जो आइडिया दे रहे हैं वो काम के नहीं है, इससे कुछ सेवा नहीं होने वाली, मैं राइट हूं, ये सिद्ध करने की इच्छा रहती है हर आत्मा में। तो जो सम्मान देने वाले हैं वो कैसे होंगे? दाता होंगे। वो कैसे होंगे? संपन्न होंगे। वो कैसे होंगे? रहम दिल होंगे। तीनों चीजों को बाबा ने यहां जोड़ा है आज। निर्माण होंगे, निर्माण में हाजी, हाजी करने में निर्माण, वो निर्माण छोटा न, निर्माण जिसे मान की कामना नहीं, हम्बल ह्यूमिलिटी, वो निर्माण। तो समान में रहने वाले सबको मान देंगे, कभी देहभान में नहीं आएंगे, हाजी करने में निर्माण होंगे और सबको मान देंगे। ऐसा क्यों? ज्ञान यह कहता है, ज्ञान क्या यह कहता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सब क्या है? बाबा ने कहा रोब के अंश। तो रोब के अंश तुम्हारे संकल्प में और बोल में भी ना हो। ऐसा क्यों? ऐसा होता है क्या? ज्ञान ये कहता है क्या? ये सब भी रोब के अंश है। कभी बाबा ने मुरली चलाई है रोब पर, क्या पुरुषों का यह जन्मसिद्ध अधिकार है रोब? बाबा ने पूछा एक मुरली में भाइयों से, क्या रोब को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हो? कोई क्रोध कर रहा हो और आपने क्रोध किया तो ये हुआ आग में तेल डालना, और रोब करना ये हुआ घी। घी नहीं, बाबा ने कहा छींटे डालना। इस पर भी एक अव्यक्त वाणी है। और क्या कहा आगे? रहम दिल, संपन्न, दाता, ये सारी बातें उसमें आ गई। फिर बाबा किससे मिल रहे हैं? बॉम्बे के ग्रुप से मिल रहे हैं। बॉम्बे के लिए क्या क्या कहा बाबा ने? फॉलो फादर करने वाले। इसके लिए भी कहा जैसे बाप तुम्हें श्रेष्ठ नजर से देखते हैं वैसे तुम भी देखो इसमें फॉलो फादर। फिर बॉम्बे के ग्रुप से कहा। बॉम्बे से क्या कहा बॉम्बे वालों को? कमियों को नहीं देखो, कमाल को देखो। अगर कमाल को देखोगे तो कमी भी कमाल बन जाएगी। बॉम्बे है पुण्य भूमि, बॉम्बे है बाप की भूमि, बॉम्बे है क्या? वह भूमि जो साकार ने बहुत समय वहां बिताया, कितनी समय बाबा भी और मम्मा भी, कभी कभी चार चार मास, कभी कभी नौ नौ मास वहां पर बिताया है। बहुत सारे भाई बहनों ने अपने अनुभवों में बाबा के साथ मुंबई की बातें लिखी है। शीलू बहन जी के अनुभव बाबा के साथ, नलिनी बहन के अनुभव बाबा के साथ, डॉक्टर निर्मला बहन के अनुभव, जितने बॉम्बे वाले हैं सब ने अपने अनुभव बहुत सुंदर लिखे। रमेश भाई जी के अनुभव, उषा बहन जी के अनुभव, उसमें सुंदर सुंदर मम्मा और बाबा के साथ के संस्मरण उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये बाबा ने क्या कहा है, किसी के पाप को क्या कर दो, परिवर्तन कर दो, परिवर्तन कर दो, पाप को परिवर्तन कर दो। कमी को नहीं देखो, कमाल को देखो, कमाल को देखोगे तो कमी भी कमाल बन जाएगी। और फिर बाबा ने बॉम्बे वालों से एक प्रश्न पूछा है। कौन सा प्रश्न पूछा है? बॉम्बे वाले कौन है इधर? है एक है, कुछ कुछ है, बहुत सारे है। बाबा ने पूछा एवर रेडी के बारे में, अगर विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो जाए तो उसमें एवर रेडी हो, या क्या कहोगे, या क्या कहोगे, या क्या कहोगे? अभी संपन्न बने नहीं है, अभी प्रजा तैयार करनी है। बाबा ने कहा हर बात में संपन्न अब बनना है, हर बात में संपन्न अब बनना है, एवर रेडी। जगदीश भाई की एक क्लास है एवर रेडी के बारे में, उसने कहा है कि बहने कहती हम रेडी है और उसके बाद में आईने के सामने जाती है और 15 मिनट लगाती है, इसे एवर रेडी नहीं कहेंगे। इसे एवर रेडी नहीं कहा जाता, एवर रेडी मतलब कभी एक बहुत सारी मुरली एवर रेडी रेडी पर चली है, सारी कर्मेंद्रियों को एक सेकंड में समेट कर कर्मेंद्रिय जीत की स्थिति में स्थित होकर जब चाहो एक संकल्प में टिक जाना, अर्थात एवर रेडी। ऐसी हमारी तैयारी हो, ऐसी हमारी अंदर की तैयारी हो, उसको कहेंगे एवर रेडी। फिर बाबा ने क्या कहा, कौन इंतजार कर रहा है तुम्हारा? प्रकृति भी इंतजार कर रही है, दासी मालिकों का इंतजार करती है। कभी बाबा ने समय के लिए कहा है, समय है तुम्हारी रचना, तुम हो रचता। समय आगे आगे भाग रहा है और तुम पीछे, और समय मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहा है और कह रहा है कि हे मेरे मालिकों कहाँ हो। एक अभिव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि समय पूछ रहा है कि मालिक कहाँ हो तुम, रचना आगे जा रही है। तो प्रकृति इंतजार कर रही है, इसके भी दो अर्थ, एक तो इंतजार कर रही है और दूसरा इंतजार ऑर्डर का इंतजार कर रही है। क्या हुक्म है बोलो, कब ऑर्डर करेंगे? तो बाबा ने कभी विनाश के लिए कहा है, अभी ब्राह्मणों के ही कमजोरियों का विनाश नहीं होगा तो दुनिया का विनाश कहां से होगा? तो ये बॉम्बे वालों से बात की बाबा ने। तो सुमानधारी आत्मा है, हम सब कौन आत्मा है? सुमानधारी आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं है, समान में रहने वाली आत्मा है, रहम दिल आत्मा है, दाता, हम दाता है, सबको मान देने वाली आत्मा है, ऐसी भाग्यशाली आत्मा है, श्रेष्ठतम आत्मा है, एवर रेडी आत्माएं है। रहम होगा या तो रोब होगा, तो हम रहम दिल आत्माएं हैं, रोब का अंश भी नहीं। तो ये बात की बाबा ने मुरली में। उसके बाद में बाबा बात कर रहे किससे? कुमारों से बात कर रहे और अधर कुमारों से बात कर रहे। कुमार अर्थात, कुमार अर्थात तपस्वी कुमार, कुमार अर्थात सहयोगी कुमार, कुमार अर्थात पवित्र कुमार, कुमार अर्थात वो तो बोला है और बोलो क्या क्या कहा है। कुमार अर्थात महावीर, कुमार अर्थात निरंतर योगी, कुमार अर्थात डबल 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 निर्बंधन, कुमार अर्थात डबल शक्तिशाली, शरीर से भी शक्तिशाली और संकल्प से भी शक्तिशाली। सदा साथी समझो। कभी बाबा ने एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं और कहा कि कुमारियों को दीदी दादी बनने दो, तुम राजा बन जाओ। बाबा ने कहा है तुम उनको बनने दो दीदी दादी, तुम राजा बन जाओ। तो कुमारों के लिए 6 परिच्छेद है, 6 पैराग्राफ। कुमारों के लिए 6 बातें हैं और अधर कुमारों के लिए 6 बातें हैं, एक एक। कुमार अर्थात कुमार भी और ब्रह्मा कुमार। प्रवृत्ति का भी अनुभव है कुमार का और अभी है ब्रह्मा कुमार, डबल कुमार। अगर कुमार समझोगे तो माया आएगी, अगर ब्रह्मा कुमार समझोगे तो माया भाग जाएगी, अगर गृहस्थ समझोगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझोगे तो माया भाग जाएगी। तो कुमारों को कहा कि कुमार अर्थात ब्रह्मा कुमार, कुमार अर्थात डबल कुमार, कुमार अर्थात पूजनीय, कुमार अर्थात निर्बंधन। निर्बंधन नहीं, अभी ब्रह्मा के बारे में कहा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं? आदिदेव और आदि रतन। तो तुम सब कौन हो? आदिदेव, मास्टर आदिदेव और मास्टर आदि रतन, ईश्वर के रतन और प्रभु के रतन। ऐसा अगर नशा है और इस नशे से हर कार्य करोगे तो हर कार्य कैसा हो जाएगा? समर्थ हो जाएगा। तो टीचर्स को इसमें फिर थकेंगे नहीं, तो कुमारों को सदा बिजी रहना है बाबा ने कहा, फ्री नहीं रहना है। फ्री रहोगे तो माया आ जाएगी। भूत और प्रेत कहाँ निवास करते हैं? खंडरों में निवास करते हैं, सुनसान जगहों पर निवास करते हैं, जो वीरान जगह होती है, निर्जन स्थान, वहां निवास करते हैं। तो मन अगर ऐसा हो तो वहां पर भी भूत प्रेत आ जाएंगे विकारों के। इसके लिए बिजी रखना है, स्वयं को सर्विस में बिजी रखो। एक तो सर्विस है, स्थूल सर्विस भी, और दूसरी मन बुद्धि की जो टाइम टेबल है उसमें मन बुद्धि को भी बिजी रखना। नहीं तो कोई कहेगा हम तो कंप्यूटर पे लगे हैं सुबह से लेकर शाम तक, बिजी है, माया आने का सवाल ही नहीं, पर उसी में माया है। उसमें पता नहीं क्या क्या देख सकते हैं नेट में। नेट अर्थात अंतरजाल, इंटरनेट, अंतरजाल हिंदी रूप उसका ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद। बायोस्कोप को कोई देखेगे तो पतित बनने बिगर रह नहीं सकते। इसी हफ्ते में आया है मुरली में, अंतर जाल, जिसमें कि जाल में फंसना है। जब माया ने देखा कि ये लोग सिनेमा देखने नहीं जाते, तो घर घर में माया ने, रावण ने अपनी एक चाल चली, क्या डाला? टीवी डाल दिया। फिर देखा कि टीवी भी नहीं देखते, फिर जेब में मोबाइल डाल लिया, माया की अंतिम चाल। सबसे ब्रह्मास्त्र शेपो। तो स्वयं को सदा बिजी रखना तो माया नहीं आएगी, पहला। दूसरा, बाबा ने क्या कहा कुमारों के लिए? सेकंड पैराग्राफ, कुमार अर्थात निर्बंधन, कुमार अर्थात योग युक्त, कुमार अर्थात मन के बंधनों से भी मुक्त, लौकिक जिम्मेवारियों के बंधन से भी मुक्त, माया के बंधन से भी मुक्त। लौकिक जिम्मेवारी भी कैसे संभालो? 1, 2, 3 कैसे संभालो? खेल जैसा। दूसरा, लौकिक जिम्मेवारी कैसे संभालो? लौकिक जिम्मेदारियों का भी बंधन नहीं, डायरेक्शन प्रमाण। दूसरा, तीसरा, सुशील भाई, शैलेंद्र भाई, लौकिक जिम्मेवारी कैसे संभालो? डायरेक्शन प्रमाण, खेल समझकर हंसते हंसते कैसे संभालो? हंसते हंसते संभालोगे, थकोगे नहीं। अकेले समझोगे तो थक जाओगे, अकेले समझोगे तो उदास हो जाओगे। इसके लिए अकेले नहीं समझना अपने आप को। भगवान को बहुत पसंद आता है, और आप बनाते हैं तो? बाबा ने कुमारों की 3 मुख्य समस्याओं का यहाँ निवारण किया है, भोजन, बीमारी और अकेलापन। बाबा ने कहा घबराना नहीं है, स्वयं को लकी समझो। भोजन के लिए कहा अपने हाथ से भोजन बनाओ। कोई एक किताब छपी है ना छोटी वाली, उसमें कितना अच्छा लिखा है, वो 4 थालियां बाबा के सामने आ रही है। कौन सी किताब है मुझे पता नहीं, छोटी सी, ब्रह्मचर्य के ऊपर, पवित्रता के ऊपर स्पार्क ने किताब, संपूर्ण पवित्रता। चार थालियां बाबा के पास आ गई। पहली थाली मधुबन से आई कि जिसमें पैसे देने वाले दूसरे, कमाने वाले कोई और, देने वाले, और फिर अनाज डिपार्टमेंट में अनाज बनाने वाले राजू भाई है, फिर उधर भोजन बनाने वाले दूसरे, फिर भोग लगाने वाले दूसरे, फिर परोसने वाले दूसरे। एक थाली ये बाबा के पास आई। दूसरी थाली बाबा के पास आई सेंटर से, पैसे देने वाले कोई और, भोजन बनाने वाले या भोग लगाने वाले शायद एक ही, और फिर खाने वाले। तीसरी थाली आई बाबा के पास गृहस्थ की, स्वयं कमा रहे, भोजन बनाने वाला कोई और, भोजन बनाने वाला स्वयं या कोई और, वो एक थाली आई। तीसरी चौथी थाली आई बाबा के पास कुमार की, स्वयं कमाई करता है, स्वयं मेहनत करता है, स्वयं कमाता है, स्वयं बाप की याद में बड़े प्यार से, जैसे दूसरों के लिए बनाते हो विधि पूर्वक और प्यार से, वैसे बाप के लिए बनाता है और स्वयं भोग लगाता है और स्वयं बाप की याद में खाता है। तो बताओ बाबा की दृष्टि पहले किस थाली पर पड़ेगी? मधुबन की थाली पर नहीं। बाबा के मुंह में पानी आ गया आएगा। ऐसी थाली को देखकर जब किसी को बाबा देखते हैं कि वाह, अनन्य कोई आत्मा परमात्मा प्रेम में खो जाती है, तो बाबा कभी कहते हैं ना, बाबा उसको इमर्ज करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि वाह मेरे बच्चे, तुमने मेरी सर श्रीमत का पालन किया है। तो अपने आप को इमर्ज करो कभी सूक्ष्म वतन में और बाबा को सामने लाओ, और बाबा हमसे कह रहा है कि वाह कुमार, वाह तुमने मेरी हर आज्ञा का पालन किया है, इसके लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तो सबसे पहली समस्या है कुमारों की भोजन, तो स्वयं बनाओ स्वयं खाओ, बाप को साथी बनाओ, दो हो जाओ। कुमारों को बाबा कहते हैं युगल हो जाओ, और युगलों को कहते हैं कुमार हो जाओ, डबल को कहते हैं सिंगल हो जाओ, और जो सिंगल है उनको कहते हैं डबल हो जाओ। एक बार बाबा कुमारों से मिल रहे थे, उसमें बाबा ने मुरली चलाई है, जो कुमार अभी अभी आए हैं और बाबा से मिल रहे, बाबा ने कहा कि किसी साथी को बनाने का संकल्प तो नहीं है, अच्छा किया साथी नहीं बनाया, नहीं तो ट्रेन से आते समय उनका सामान पकड़ना पड़ता था, उनको संभालना पड़ता था। अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी चिंता करो, बच्चे स्कूल क्यों नहीं गया, बच्चा बीमार है तो उसकी चिंता करो। तो कुमार अर्थात कुमार, कु को मारने वाला, कुवृत्ति कुदृष्टि को मारने वाला कुमार, शक्तिशाली कुमार, तपस्वी कुमार, ऐसे कुमार जिनको जो चलते फिरते फरिश्ते नजर आए, कुमारों में इतनी शक्ति है। कुमार अगर निर्विघ्न बन जाए, एक मुरली है बाबा की, तो दूसरों को भी निर्विघ्न बना सकते, सारे विश्व को निर्विघ्न बना सकते, इतनी शक्ति उनमें है। तो पहला भोजन, दूसरा अपने आप में ग्रुप बनाओ बाबा ने कहा, अगर कोई बीमार पड़ता है तो एक की ड्यूटी लगा दो सेवा करने की, उसको सहयोग दो, एकाकी, फिर कंपेनियन के लिए भी बाबा ने कहा। लौकिक में भी अच्छा नहीं लगता, तो यहां बाप तुम्हारा कंपेनियन है। एक साकार मुरली में बाबा है, उसमें कहा हुआ है कि बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माँ बाप नाराज होते हैं, शादी नहीं करते तो क्या करें? तो बाबा कहते हैं अगर दिल है तो करो। बाबा कहते हैं दिल है तो करो, उसके आगे की लाइन है बहुत पावरफुल, अगर बाप के याद में सर भी कट जाए तो उच्च पद पाओगे। बाप की याद में अगर सिर भी कट जाए तो उच्च पद पाओगे। जो आने वाला है उस पर उसका कोई भरोसा? ये भी कहा है बाबा ने, तो परेशानी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। अभी स्वतंत्र हो, फिर जिम्मेवार हो जाओगे, जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। अभी स्वतंत्र हो, जहां चाहो वहां जा सकते हो। वो तो जोक पता है ना, कोई एक गृहस्थी है, भगवान की बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है, इतनी भक्ति करता है कि भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं मन्नत मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। वो कहता है मैं बहुत दुखी हूं, पत्नी ने मुझे दुखी कर छोड़ा है, मुझे वापस कुमार बना दो। भगवान कहते हैं मैंने जन्नत मांगने को कहा, मैंने मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। तो कुमार जीवन अर्थात जन्नत। पुरानी दुनिया की तरफ कुमारियों से मुलाकात कभी बाबा ने की है। अगर कुमारी दुनिया की तरफ जाने का संकल्प है तो माना जहन्नुम में जाते हो। बाप दादा को कुमारियों पर हंसी आती है। एक मुरली में कहा है कि बाप सब कुछ देने को तैयार है और फिर भी टोकरी उठाने को तैयार है। तो कुमारों से मुलाकात, उसके बाद में फिर बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप। कुमार अर्थात ज्वाला स्वरूप। ज्वाला स्वरूप बनकर ज्वाला बने तो विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होंगे। योग की अग्नि को तेज करो तो विनाश की अग्नि तेज होगी। चौथा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, सातवां ब्राह्मण, पांचवा पैराग्राफ, चौथा अर्थात चौथे में क्या कहा बाबा ने, जैसे ऐसा क्यों, ऐसा क्या क्यों, क्या क्यों ये कौन कहते हैं? जो मास्टर त्रिकालदर्शी है वो नहीं कहते, जो तीनों काल को जानने वाले वो क्या क्यों में नहीं जाएंगे। क्या क्यों में कौन कहते हैं? तो बच्चे कहते हैं। आप सब कौन हो? वानप्रस्थी। एक तरफ बच्चे, एक तरफ वानप्रस्थी। दोनों कहते हैं बाबा। बहुत सारी लहरें होती है बाबा की, कभी ये हो कभी वो हो। एक मंदिर है ना इधर लहरी बाबा का, तो ज्ञान सागर की लहरें होती है, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी कुछ कभी कुछ। तो वानप्रस्थी, बाबा ने कहा आगे क्या कहा, एक अब तुम सब कौन हो? रूहानी युद्ध ग्रुप। और अधर कुमारों के लिए भी एक ग्रुप कहा है, कौन सा? कमल पुष्पों का गुलदस्ता। कभी देखा कमल पुष्पों का गुलदस्ता? फूलों का गुलदस्ता, गुलाबों का गुलदस्ता ठीक है, कमल पुष्पों का गुलदस्ता। तो कुमार कौन है? रूहानी युद्ध। रूहानी युद्ध, वो युद्ध क्या करते हैं? गवर्नमेंट को चैलेंज करते, बदल देंगे। वो करते हैं डिस्ट्रक्शन, विनाश, नुकसान। तुम करते हो कंस्ट्रक्शन। जब तुम स्थापना करोगे तो विनाश स्वतः ही हो जाएगा। बाबा ने कभी कहा है कि जब तुम डिस्टर्बेंस फ्री हो जाओगे तब डिस्ट्रक्शन होगा। जब तुम डिस्टर्बेंस फ्री हो जाओगे तब डिस्ट्रक्शन होगा। फिर उसके बाद में एक कुमारी कितने के बराबर है? 100 ब्राह्मणों के बराबर। तो 7 शीतलाओं के बीच में एक कुमार, तो एक कुमार कितने हो गए? 700 ब्राह्मण। तो ठीक है ना, कुमारी कुमार है, हार्ड वर्कर। बाबा क्या कहते हैं? जो चाहे वो कर सकते हैं। अपने एक ऐसा ग्रुप तैयार करो, रेस नहीं कर, रेस करनी है, रीस नहीं करनी है। रेस नहीं करनी है, रीस करनी है। रीस नहीं करनी है, रेस करनी है। किस में रेस करनी है? पुरुषार्थ में रेस करनी है, याद में रेस करनी है, योग में रेस करनी है, ज्ञान में रेस करनी है, ये सब रेस करनी है। तो माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे परंतु अंगद समान, अंगद मुआफिक, नाखून भी ना हिले, बाल भी ना हिले, इतनी अच्छे और अडोल अवस्था हो। लास्ट में क्या कहा बाबा ने? कुमार अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, डबल सेवा, ऑलराउंड सेवाधारी, हर प्रकार की सेवा करने वाले। ऐसी कोई भी सेवा न हो जो हमने ना की हुई हो। लिस्ट बनाओ, ऐसी कौन सी सेवा रह गई है जो मैंने अब तक नहीं की? ज्ञान सुनना सुनाना वो सब तो एक है, पर ऐसी कौन सी सेवा अब तक भी है जो हमने नहीं की है? कौन सी रही सेवा की? बाबा ने कहा रूहानी डॉक्टर बन जाओ। ब्रिजेंद्रा दादी नहीं, निर्मल शांता दादी के अनुभव में लिखा हुआ है ना कि पहले लौकिक में जब दादा लेखराज थे तब एक तो मारवाड़ी और एक अंग्रेज, ऐसी दो दाया हुआ करती थी बाल बनाने के लिए भी। अगर किसी को देखा बाल बनाते हुए खुद अपनी बेटी को तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था, खुद बाल क्यों बना रहे हो, जब ये दाए लोग हैं वो करेंगे। और इधर ब्रह्मा बाबा का क्या उदाहरण क्या दिखाया हुआ है कि चप्पल टूट गई तो बाबा ने दादी को कहा तुमको मोची इतनी भी अकल नहीं है। तो ऑलराउंड सेवाधारी, ऐसे हैंड्स तैयार हो जाए। तो क्या कहा कुमारों को बाबा ने, कुमार अर्थात निर्बंधन, कुमार अर्थात मास्टर आदिदेव, कुमार अर्थात सदा बिजी रहने वाले, कुमार अर्थात त्रिकालदर्शी, कुमार अर्थात गृहस्थी, कुमार अर्थात ज्वाला स्वरूप, कुमार अर्थात निर्बंधन, कुमार अर्थात कोई पूछ नहीं, पूछ लगाने का संकल्प तो नहीं है, परेशान हो जाओगे। कभी अंदर से पूछ लगा देते हो, अंदर की पूछ, अंतर्विवाह, सुभद्रा और रुक्मणी का दिखाते हैं ना, पहले ही पति मान लिया था उन्होंने, शादी तो हुई नहीं थी पहले ही। तो ये भी पूछ है। बाबा ने कहा कुमार अर्थात एक रस, ऐसे नहीं कि कोई किधर खिसकाने की कोशिश करे और खिसक जाओ। क्या वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य है, लुढ़कने वाले लोटे तो नहीं हो। लुढ़कने वाले लोटे नहीं, तो कुमार अर्थात शक्तिशाली। फिर उसके बाद बाबा किससे मिल रहे हैं, अधर कुमारों से। क्या कहा अधर कुमारों से, आधा कल्प, क्या आधा कल्प, दर्शन, तुम दर्शन को जाते रहे। और बाबा कहां से आया है, परम धाम से बाप आया है, किस लिए, तुम्हारे दर्शन करने के लिए। तुम बाप के दर्शन के लिए भटकते रहे और बाप आया है तुम्हारे दर्शन के लिए, और परम धाम से आया वो दर्शन अर्थात मिलना, दर्शन अर्थात देखना। तो कितने ऊंचे हो तुम, कौन ऊंचा है, बाप या हम, कल की मुरली कौन बड़ा है। बाप आकर कहते हैं नमस्ते, नमस्ते तो कहो, बाप तो विश्व का मालिक नहीं बनते, तुम्हें विश्व का मालिक भी बनाते हैं और ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं, तो तुम तो बाप से भी बड़े हो। तुमने स्नेह के सागर को, प्यार के सागर को अपने स्नेह की रस्सी से बांधा है, तो बोलो कौन बड़ा, बंधने वाला बड़ा या बांधने वाले बड़े। तो तुम बाप से भी बड़े हो, तुम बाप के भी। खींच के ले जाता है अपनी स्नेह की दोहरी में, तुमने हमने बांधा है उसको, जबकि भक्तों ने बांधा है, तो हम तो बच्चे हैं। जब भक्तों की पुकार पर वो आया है बार बार, अगर हम उसे पुकारे, जिन्होंने उसको अपना साथी बनाया है, तो क्या वो नहीं आएगा, सारे विश्व का बोझ उठाने वाला, क्या हमारा बोझ नहीं उठाएगा। योगक्षेमम वहाम्यहम, गीता में एक श्लोक है जो संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित है, तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प बुद्धि संस्कार, उसका सब कुछ मैं करूंगा, उसकी जिम्मेवारी अब मेरी है। असोच बन जाओ, अगर तुम बाप की याद में खोए हुए हो तो तुम्हें सोचने, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा, ये परमात्मा प्रतिज्ञा है, सादी प्रतिज्ञा नहीं है। पर हमारा समर्पण भी उतना होना चाहिए, उतना सूक्ष्म, संकल्पों का भी भोग लगाओ, कभी बाबा ने कहा है सरेंडर अर्थात श्रीमत के अंडर चलने वाले सदा। तो अधर कुमार अर्थात क्या कहा अधर कुमारों को, कमर, बाप भी उनके दर्शन के लिए आते, प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहने वाले। लास्ट संडे की मुरली भी निवृत्ति वालों की बहुत महिमा की थी बाबा ने, प्रवृत्ति में रहते परंतु निवृत्त रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस रखते है, सदा बाप की छत्र छाया में रहते हैं, इस कारण से माया के वार और आकर्षण से सेफ है, प्रवृत्ति में रहते हुए भी साथी और साक्षी है। इसके लिए विश्व के आगे एक दृष्टांत है। ऐसे प्रवृत्ति वालों की बाबा महिमा कर रहे हैं। फिर आगे क्या कहा, प्रवृत्ति वालों के लिए बाबा ने कि वो सब कौन है, ट्रस्टी, न्यारे। ट्रस्टी हिंदी में क्या शब्द है ट्रस्टी के लिए, सुंदर शब्द है, न्यासी। संन्यास एक शब्द है, संन्यास, संन्यास अर्थात ट्रस्ट, मेरा कुछ भी नहीं, ये संन्यास का अर्थ है। उसमें भी न्यास शब्द आता है, न्यास अर्थात ट्रस्ट, न्यासी अर्थात ट्रस्टी, मेरा कुछ भी नहीं। ये मेरापनी क्या करता है बाबा कहते हैं, मैला बनाता है। जैसे उदाहरण कौन सा दिया, कीचड़ का उदाहरण, जैसे कीचड़ में क्या होता है, कीड़े पैदा होते हैं, वैसे मेरापन से किसका दिव्य जन्म होता है, माया का अवतरण होता है वहां पर। तो माया का जन्म होता है वहां पर, अगर जहां जहां मेरापन है वहां वहां माया का जन्म होता है। तो ट्रस्टी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, ट्रस्टी अर्थात न्यारा, ट्रस्टी अर्थात हद की प्रवृत्ति में रहते बेहद के सेवाधारी, हद की प्रवृत्ति में रहते परंतु बेहद के सेवाधारी। इतनी अनासक्त वृत्ति, इतना कमलवत जीवन, इतनी अस्पर्श की अवस्था, इतना विकारों से निर्विकारी, विकारों से वैराग, ऐसी अवस्था, स्पर्श भी ना करे विकार, ख्याल भी ना हो, टचिंग भी ना हो, ऐसे जो पवित्र है वो बाप को अति प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास लिखता है कि जो निर्मल है, जिसका हृदय शुद्ध है, सो मोहि पावा। राम की शरण में विभीषण आता है, सब लोग कहते हैं इसे मत लो, ये शायद रावण की चाल होगी, परंतु श्री राम कहते हैं उसमें कि नहीं, ये शुद्ध हृदय से आया है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल, जो कपटी है, जो छल करता है, जो छिद्र है, जो छिद्र अर्थात दूसरे के दोष देखने वाले है, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, ऐसे मुझे प्रिय नहीं है। जिनका हृदय विशुद्ध है, वासनाएं जहां से तिरोहित हो गई है, इच्छाओं का जहां पर अभाव है, जिनका एक में समर्पण भाव है, ऐसी जो आत्माएं हैं, जो मगन है, जो समर्पण जिनका संपूर्ण है, वो मुझे अति प्रिय है। मन मना भव मध्याजी वक्ता माम नमस्करु, जिनका मन मुझ में लगा हुआ है, ऐसे मुझे अति प्रिय है। मेरे अतिरिक्त उन्हें और कोई प्रिय नहीं है इस संसार में। तो अधर कुमार अर्थात पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले, प्रवृत्ति में है परंतु निवृत्त अवस्था में है। अधर कुमार अर्थात ट्रस्टी, अधर कुमार अर्थात जिसमें मैपन नहीं, और कोई संबंध समझा तो माया आ जाएगी। क्या कहा, और कोई यदि संबंध समझा तो माया आ जाएगी। फिर और क्या कहा, वो कुमारों को कह दिया वानप्रस्थी समझो। हाँ, फिर है अनुभवी मूर्त, नहीं उसके पहले भी और एक चीज है, विघ्न विनाशक वाली। सदा अपने को विघ्न विनाशक समझते हो, विघ्न विनाशक समझने के लिए मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, दोनों समानों को बाबा ने याद किया है। ऐसा नहीं कि कभी विघ्नवश कभी विघ्नजीत। एक घंटा यदि सफल किया तो लाख गुना सफल हो जाएगा, एक घंटा यदि वेस्ट किया तो लाख गुना घाटा पड़ जाएगा। और एक चीज कह दी, बड़े से बड़े बाप के बड़े से बड़ी संतान, बड़े से बड़े बच्चे हो तो हर सेकेंड अटेंशन, हर सेकेंड अटेंशन, अटेंशन का पहरेदार यदि ठीक हो तो सोमवार का स्लोगन, मंडे स्लोगन, अतिंद्रियों का सुख का खजाना खो नहीं सकता। सारे खजाने बाबा ने कहा है, दो पहरेदार होने चाहिए, एक चेकिंग और दूसरा अटेंशन। ये पहरेदार निरंतर घूमते रहे, इधर और एक इधर, हमारे इर्द गिर्द, ताकि चोर ना आए। चौथा, अधर कुमारों को बाबा ने कहा क्या करो, ज्ञान सागर की गहराई में जाओ। ज्ञान सागर की गहराई में जाओ तो क्या मिलेगा, रत्न मिलेंगे। कौन से रत्न मिलेंगे, अनुभव के रत्न मिलेंगे। और आप अगर अनुभव हो जाओ तो आपको देखकर दूसरे भी अनुभवी हो जाएंगे, आपके अनुभव को देखकर दूसरे भी अनुभवी हो जाएंगे। तो एक है सुनना सुनाना फर्स्ट स्टेप, और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। कभी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, एक है श्रोता स्वरूप, एक है वक्ता स्वरूप। ज्ञान अर्थात ना श्रोता स्वरूप ना वक्ता स्वरूप, ज्ञान अर्थात अनुभव स्वरूप। सुनना सुनाना नहीं, केवल सुनना सुनाना तो एक तरफ ही हो गया, यहां है अनुभव की बात। एक है केवल सुन लिया, बाबा ने यह भी कहा है ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान को बुद्धि में रखना ज्ञान नहीं है, ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान को वर्णन करना ज्ञान नहीं है, ज्ञान अर्थात स्वरूप। विवेकानंद ने कभी धर्म की परिभाषा दी है एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में, रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म अर्थात अनुभूति। एक ही शब्द में परिभाषा दी है कि धर्म अर्थात किसे कहा जाएगा, धार्मिक जो अनुभवी है, जो पंडित है वो धर्म, वो जरूरी नहीं है, वो धार्मिक है। धर्म अर्थात ही रियलाइजेशन, जिसने रियलाइज किया है, अनुभव किया है कुछ। तो जब इस भूमि में हम आ रहे हैं तो रोज अनुभव करो, किस किस का अनुभव करो, बाबा ने कहा हर गुण का अनुभव करो, अपने गुण अनुभव को बढ़ाते जाओ, जो बोलते हो उसका अनुभव करो। शिवानी बहन ने कभी कहा है मैं जो सुनाती हूं मैं खुद सुनती हूं, जो दूसरों को सुनाती हूं वो मैं खुद सुनती हूं बाद में कि क्या सुनाए, क्या मैं उसका स्वरूप बनी हूं। जो दूसरों को सुनाते हो उसका स्वरूप क्या मैं खुद बना हूं। सुनाना तो बहुत आसान है, सहन शक्ति पर क्लास कराना कहो तो कई लोग करा सकते हैं, परंतु उसका स्वरूप बन जाना ये थोड़ी आगे की स्टेज है। अनुभवी के फिर बहुत सारे लक्षण बताए बाबा ने, अगर अनुभवी हो तो अविनाशी बन जाओगे, अगर अनुभवी हो तो निर्विघ्न बन जाओगे, अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, अनुभवी कभी माया कितनी भी हिलाने की कोशिश करे हिल नहीं सकते, माया कितना भी अपना बनाने की कोशिश करे माया सफल हो नहीं सकती, ये सब अनुभवी मूर्त आत्मा की निशानी है। सब ने अनुभव कर लिया, अगर हमें कोई अपने इस निश्चय से हिलाने की और डिगाने की कोशिश करे तो क्या हम हिल जाएंगे। समझो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आ जाए और मेडिटेशन हॉल में एक क्लास कराए कि बाहर की चीजें खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, और बहुत ही तर्क देकर अपनी बात को सिद्ध कर दे, यहां वहां के उदाहरण देंगे तो क्या कर लोगे, क्यों? अनुभवी कभी विचलित नहीं होते, कभी धोखा नहीं खा सकते, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे ब्रह्मा भी आकर कह दे कि मुझ में भगवान नहीं आता तो क्या कहोगे, नहीं तुम भी आता है। तो ऐसा हमारा निश्चय अचल हो, अड़ल हो, ये निश्चय की परीक्षा है यहां पर। फिर सेकंड लास्ट पैराग्राफ, मनन के लिए बाबा ने कहा यहां पर, बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है, सबसे सुंदर इस मुरली का। क्या कहा, जो भी सुनते हो उसका क्या करो, जो भी ज्ञान सुनते हो, पहले तो कहा यहां दो विधि बताई, तीव्र पुरुषार्थ में आगे चल रहे हो उसमें दो विधि बताई, एक तो मनन और दूसरा मधुबन की का स्मरण। जब व्यर्थ संकल्प के लिए शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा हो, तो शुद्ध संकल्प का स्टॉक कहां से मिलेगा हमको, अव्यक्त वाणियों से मिलेगा, अव्यक्त वाणियां बिखरी पड़ी हुई है, परंतु हम उसे ले तो, नहीं तो उस भिखारी की तरह हमारी दशा ना हो जाए कि वहीं पे खजाना गड़ा था और उसे पता ही नहीं। वैसा ही एक दूसरा उदाहरण है, एक मछुआरा होता है, सुबह सुबह एक दिन निकल जाता है, अभी भोर हुई नहीं है, अंधेरा सा है, मच्छी पकड़ने के लिए रास्ते में उसकी ठोकर लगती है, उठाता है एक थैला होता है, उसमें कुछ पत्थर पड़े होते हैं, पत्थरों को लेके बैठ जाता है सूरज उगने की राह देखते हुए, और करे क्या, एक एक पत्थर निकालता है और फेंकता है समुन्दर में, पानी में, और छपाक की आवाज आती तो बड़ा खुशी होती है उसको, एक एक पत्थर फेंक रहा है, फेंक रहा है, और इंतजार कर रहा है कि कब सूरज निकले और कब फिर मैं मछली पकड़ू। फेंकते फेंकते बस अभी अंतिम पत्थर रह जाता है, अभी फेंकने ही वाला होता है कि सूरज उग जाता है, सूर्योदय हो जाता है, और देखता है ये तो हीरा है, ये मैंने क्या कर दिया, अब तक जो कुछ किया वो सब हीरे थे, पर फिर भी भाग्यवान एक तो मिला, तो हम कहीं जो इतने महावाक्य के जो बाबा के चल रहे उन हीरो को कहीं साधारण तो नहीं समझ रहे। जो रोज की मुरली चल रही है, 24 घंटे का टाइम हमको मिलता है उसको धारण करने के लिए, कितनी बार उसको हम अध्ययन करते, चिंतन करते, मनन करते हैं। मनन के लिए कह रहे हैं क्या करो, अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो मनन शक्ति की कमी है। तो रोज की मुरली से स्वयं को क्या करो, रोज एक टॉपिक दो और उसके ऊपर सोचो, कोई भी एक बात लो और उसकी गहराई में जाओ, उसका विस्तार करो, तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो हर एक को ये होमवर्क है, कोई भी एक टॉपिक लेना, कोई भी एक शब्द लेना और उसके विस्तार में जाना, एक टॉपिक लेना उसके ऊपर सोचना, अगर ये करोगे तो बिजी रहेंगे, ये करोगे तो व्यर्थ नहीं आएगा और शक्तिशाली बनेंगे। मनन से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है, मनन के बाद ही ज्ञान बुद्धि में रहता है। मनन नहीं करते इसके लिए हम केवल पढ़ते हैं, इसके लिए ज्ञान विस्मृत हो जाता है। मनन करोगे तो ही ज्ञान अपना बनेगा। वो जो पॉइंट है वो मुरली में है, परंतु वो हमारी अपनी नहीं बनी। जब तक हम मनन नहीं करते वो अपनी नहीं बनती। तो मनन के लिए बाबा ने कहा, और क्या कहा अधर कुमारों को, लास्ट पैराग्राफ। और एक चीज है, पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर हर कर्म करोगे तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। और क्या है वहां पर, और एक चीज है सुशील भाई, क्या बीज की बात है, तुम सब कौन हो, मैसेंजर हो, बीज डालते जाओ। कोई बीज सीजन में आएगा, कोई जल्दी आएगा, कोई सीजन में आएगा, बीज अविनाशी है। ऐसा नहीं कहो कि कितनों को बुलाया पर केवल दो तीन आए, बीज अविनाशी है, ये भूलो मत। एक अंतिम अनुभव सुनाता हूँ ये इसी के बारे में, कि बाबा ने जो कहा है बीज डालते जाओ, ये नहीं सोचो कि दो तीन ही आए, इतनों को बुलाया। मुझे याद है जब मैं उधर पढ़ाई कर रहा था, जब माइंड बॉडी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मैं दिन रात घूमता था डॉक्टरों के पास निमंत्रण देने के लिए कि चलो चलो चलो, कोई आने को तैयार नहीं। इतना घुमा, एक भी डॉक्टर को नहीं छोड़ा, पर कोई भी तैयार नहीं हो। रात लास्ट में एक ही व्यक्ति तैयार हुई, वो भी डॉक्टर नहीं थी, वो स्टेटिस्टिशियन थी मैडम। तो हमारी बहन जी ने कहा इसको ले जाओ डॉक्टर बना के। तो मुझे बड़ा मतलब थोड़ा निराशा हुई अंदर कि क्या करूं, इतना घुमा, कोई एक ही निकला और वो इसी एक को ही लेके जाना है। रिजर्वेशन करने गए तो रिजर्वेशन मिला नहीं, वो भी बस में, जो आने को ट्रेन से 20 घंटे लगते हैं लगभग, वो मुझे दो दिन लगे क्योंकि चार बसेस बदल के आए। वहां से जहां मैं था वहां से पूना से वापस बदली बस नासिक, नासिक से वापस बदल के सूरत, और सूरत से फिर मधुबन। तो मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है। पर बहन जी ने कहा एक आत्मा है ना, फिर भी ले जाओ उसे। तो उस आत्मा को इतना मतलब तो कितना दो दिन लगा पूरा, वो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, फिर लेके आया। परंतु उसको वो एक ही आत्मा, वो भले डॉक्टर नहीं थी, वो स्टैटिस्टिशियन थी मेडिकल कॉलेज में ही, परंतु उसे बहुत अच्छे अनुभव हुए। और बाद में जो डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का नीचे का जो प्रोजेक्ट है, उसका पूरा स्टैटिस्टिशियन का जो भी काम है, उन्होंने बाद में 15 दिन के लिए वो सेवा में आए और उन्होंने वो सारी की सेवा। तो जो भी हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते, ज्ञान अविनाशी है, अविनाशी बीज है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस थी उसमें वापस घूमा, तो फिर उसमें थोड़े निकले 24, फिर वो WCCPC थी उसमें 100 से ऊपर। तो शुरुआत जो थी वो बड़ी, कभी कभी उदास हो जाता है मन इस तरह के, आज बाबा ने कहा ना कईयों को बुलाया पर आए दो चार, तो उदास नहीं होना है इसमें कभी भी। तो ये थी आज की मुरली, तो इसको आज यहीं पूरा करते हैं। वैसे वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी कहा बाबा ने। लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो बाप के मन पसंद, तो ऐसा संकल्प अगर है तो जो बाप की पसंद है वो लोक पसंद हो जाएंगे, स्वार्थ नहीं, विश्व कल्याणार्थ। अच्छा, ओम शांति। माताओं के लिए, माताओं तो चुप बैठी थी, माताओं ने कुछ बोला ही नहीं। एक मुरली इस पर भी चली है, कभी बाबा ने, कभी 1962 में दो मूवी रिलीज हुई थी, मैं चुप रहूंगी, 62 में मूवी रिलीज हुई थी मैं चुप रहूंगी और अनपढ़, तब बाबा ने उस पर भी मुरली चलाई थी कि तुम माताओं चुप रहो और अनपढ़ है तो बहुत अच्छा, अब तक जो भूला है भूल जाओ। तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बस चुप रहना है। माताओं को बताइए, मदर डे। बाबा ने कहा एक एक भारत माता है, मदर कंट्री एक एक भारत माता। ओम शांति।